नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राज्यसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर आगे की चर्चा होगी। चर्चा केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा के संबोधन के साथ समाप्त होगी। इसके बाद राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू होगी। चुनावी सुधारों और मतदाता सूची से जुड़ी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर कल लोकसभा में जोरदार बहस हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठियों को देश में राजनीतिक नेतृत्व तय नहीं करने देंगे। उन्होंने विपक्ष पर अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए अवैध प्रवासियों को बचाने का आरोप लगाया।
कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठियां तय करेंगे, मान्यवर नहीं रह सकते। इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं है, ये थोड़े विदेशी दे देते थे वो भी चले जाएंगे।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव सुधार पर हुई चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के भाषण की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मणिपुर के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य में आयोजित होने वाले कई औपचारिक और विकासात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर इम्फाल पहुंचेंगी, जहां उन्हें पारंपरिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद वे ऐतिहासिक मैपल कांगजेईबुंग स्टेडियम का दौरा करेंगी, जहां वे राज्य की समृद्ध खेल विरासत को मनाने के लिए आयोजित एक पोलो प्रदर्शनी मैच देखेंगी। शाम को राष्ट्रपति इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार द्वारा आयोजित एक नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगी। कल राष्ट्रपति इम्फाल में नुपी लाल स्मारक परिसर का दौरा करेंगी और मणिपुर की उन बहादुर महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी जिन्होंने राज्य के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। इसके बाद वे सेनापति जाएंगी, जहां वे एक जनसभा को संबोधित करेंगी और जिले में विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। इम्फाल से जे थोकचोम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने गुरुग्राम स्थित इंडिगो के कॉरपोरेट कार्यालय में एक विशेष निगरानी दल का गठन किया है। इसका उद्देश्य उड़ान में देरी होने और इसके रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को होने वाली असुविधा को दूर करना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उपकरणों को अपनाने, विकसित करने और लागू करने से संबंधित पहलुओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय की AI समिति का पुनर्गठन किया है। 5 सदस्यों की समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा करेंगे। रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्रा को किफायती बनाए रखने के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की छूट दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि यात्रियों को दी गई सब्सिडी कुल यात्रा लागत का 45% है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे का किराया विश्व में सबसे कम है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई श्रम संहिता के तहत कारखाना मालिक श्रमिकों को 12 घंटे काम करने के लिए मजबूर करेंगे और उन्हें केवल 8 घंटे का वेतन देंगे। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दोनों दावे झूठे हैं। एशियाई विकास बैंक ने अपनी एशिया और प्रशांत विकास दृष्टिकोण रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को 6.5% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। जुलाई सितंबर की तिमाही में भारत द्वारा दर्ज की गई मजबूत वृद्धि दर तथा वर्तमान वित्त वर्ष में विकास की ओर और भी मजबूत संभावनाओं के कारण 0.7% अंक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 2020 क्रिकेट मैच आज चंडीगढ़ में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। कटक में हुए पहले मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया था। मौसम विभाग ने देश के मध्य पूर्वी और तटीय इलाकों में रविवार तक शीतलहर जारी रहने का अनुमान जताया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज और कल शीतलहर रहेगी। अगले 2 दिनों तक मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक ओडिशा में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इधर दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।